बाइबल पाठ है रोमियो 8:12-16, जहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनने का यह अंतिम मामला है, यह है पालन करने की इच्छा। पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अपने हृदय से असत्य को निकाल फेंकना है। शरीर की इच्छाएं वो विशेषताएं हैं जो आपके हृदय के असत्य को प्रकट करने की कोशिश करते हैं बाहरी क्रियाओं के प्रकटीकरण के रूप में। जब हम लगातार पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करते रहेंगे तो शरीर की इच्छाएं महानता से कमजोर हो जाएगी और अंत में पूरी तरह से गायब हो जाएगी। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मूसा बहुत अधिक दीन व्यक्ति था। इस धरती पर वह सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था, इसलिए वह परमेश्वर को देख पाया। लोग जानते हैं कि दूसरों के लाभ के पीछे चलना यह लाभ है, लेकिन उस स्थिति का वो सामना नहीं कर पाते जहां पर उनका नुकसान होता है। उन्होंने सीखा है कि उन्हें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है जो लोगों को मुश्किल में डालता है तो वे लोग उनके साथ बुराई करते हैं। वो अविश्वासियों के समान जीवन जीते हैं और अंत में पवित्र आत्मा के कार्य उनमें पूरी तरह से रुक जाते हैं। इसी प्रकार से यदि आप शारीरिक चीजों को सिर्फ इसीलिए ले लें क्योंकि शरीर के विरोध में संघर्ष करना मुश्किल हो, तो इससे आपका संघर्ष और भी बढ़ता जाएगा। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो शरीर की इच्छाओं के लिए एक प्रकार का बल है। प्यारे भाई और बहनों, यहां तक कि मैराथन की दौड़ में भी अंतिम बिंदु होता है, यहां तक कि बहुत लंबी सुरंग का भी अंतिम बिंदु होता है, और आपके लिए शरीर की इच्छाओं को दूर करने की प्रक्रियाओं का भी अंत है। लेकिन उस अंत का समय आपके निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, आज, कल या आधे साल बाद या एक साल बाद, यह आपका निर्णय है। यदि आप बिना आराम के दौड़े तो समय तेजी से आ पहुंचेगा, परंतु यदि आप बीच में रोक दें या पीछे फिर जाएं तो यह लंबा चलेगा और आपको यह थकान भरा महसूस होगा। यदि आप अपने संघर्ष को समाप्त करें और चौथे विश्वास के स्तर में जाएं या ऊंचे स्तर में, तो फिर शरीर की इच्छाओं का अनुसरण करना कहीं अधिक मुश्किल होता है आत्मा के बजाय। ये बहुत आसान और खुशनुमा होता है पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना। इसीलिए वो जो आत्मा में आते हैं या संपूर्ण आत्मा में, वो शरीर की इच्छाओं का अनुसरण करने को पसंद नहीं करते, चाहे उन्हें पैसा ही क्यों ना दिया जाए ऐसा करने को। आप आत्मा की जन से बात कीजिए, आप उससे बात कीजिए कि कहीं पर बहुत सोना रखा हुआ है और लेने में कोई मुश्किल नहीं, आप जाइए उसे ले लीजिए, लेकिन वो उसे नहीं लेगा। बजाय इसके वह पुलिस स्टेशन ले जाएगा या ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ले जाएगा या उसको उसके स्वामी को लौटा देगा, लेकिन वह उसे नहीं लेगा अपने लिए। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा है उसे ले लेने की, तो वह आत्मा से बहुत दूर है, वह आत्मा में अभी नहीं आया है। इसलिए आत्मा के जन के लिए पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना आसान है, खुशनुमा है, और शरीर की इच्छा का अनुसरण करना वास्तविकता में मुश्किल है, चाहे उन्हें पैसा भी क्यों ना दिया जाए, वो नहीं कर सकते हैं ऐसा। मुझे आशा है कि आप केवल पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करेंगे, अपने हृदय में तेजी से संघर्ष को दूर करेंगे और आत्मा में आ जाएंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने मन में रखना है कि आप शरीर की इच्छाओं के विरोध में संघर्ष समाप्त कर सकें। सबसे पहला, आपको जैसे ही आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं वैसे ही पालन करना है। मैं आपको बता रहा हूं जिसे आपको अपने मन में रखना है कि शरीर की इच्छाओं के विरोध में अपने संघर्ष को आप समाप्त कर सकें, ठीक है? आप शरीर के विरोध में संघर्ष को तेजी से अगर समाप्त करना चाहते हैं तो कृपया अपने मन में रखें कि सबसे पहले जैसे ही आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं वैसे ही आपको उसका पालन करना है, ठीक है? यदि आप उस आवाज को अनदेखा करें और यह सोचें कि इस बार नहीं, मैं अगली बार पालन करूंगा, तो फिर वह आवाज महानता से धुंधली पड़ जाएगी और अंत में गायब हो जाएगी। जब आप लगातार उल्लंघन करते रहेंगे तो फिर आप पाप की दीवार भी परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप जैसे ही उसे सुने और पालन करें तो आप उसके द्वारा तेजी से उचित रीति से अगुवाई पाएंगे। इसमें बहुत साल नहीं लगेगी कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को साफ रीति से सुनने लग जाएंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप स्थिर निर्णय लें और इस प्रकार से करें। प्यारे भाई और बहनों, शरीर की इच्छाओं के विरोध में तेजी से अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए दूसरा, आपको प्रार्थनाएं नहीं रोकनी है। आपको अवश्य ही अपनी प्रार्थनाएं नहीं रोकनी है। आप एक दिन में 3 बार खाते हैं, ठीक। यदि आप खाना छोड़ें तो आपको भूख लगती है कि नहीं। प्रार्थना भी ऐसे ही होनी चाहिए। चाहे आप छुट्टियों पर भी जाते हो या फिर किसी विदेशी बिजनेस ट्रिप पर जाते हो, लेकिन अगर आप सुबह में, दोपहर बाद में और बिस्तर पर जाने से पहले प्रार्थना करें, मेरा मतलब है दिन में 3 बार प्रार्थना करें, तो वह कितना अच्छा होगा। आप विशेष दानियल प्रार्थना सभा में बहुत परिश्रम से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद आप प्रार्थना क्यों रोक देते हैं? आपको परमेश्वर की दृष्टि में प्रिय नजर आना है। प्रार्थना आपका काम है, इसलिए आपको उसे करना है। प्रार्थना को रोकना पाप है। भविष्यद्वक्ता शमूएल कहता था कि जहां तक मेरी बात हो, यह मुझसे दूर रहें कि मैं प्रार्थना को रोकने के द्वारा प्रभु के विरोध में पाप करूं। प्रार्थना को रोकना पाप है। हमारे प्रभु ने भी कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। लेकिन आप में से कुछ प्रार्थना करना रोक देते हैं परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए, और आप पाप कर रहे हैं। वो जो बिना रोके हुए प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर से बातचीत करते हैं। इसीलिए अगर कोई आपातकालीन स्थिति होती है, जैसे कि कोई खतरा हो गया या कोई आपातकालीन या मुश्किल काम हो गया, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनको उत्तर देता है ये कहते हुए कि हाँ, मैं यहां पर हूं। लेकिन वो जो प्रार्थनाएं रोकते हैं, जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर तेजी से उत्तर नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना रोक कर पाप की दीवार खड़ी कर देते हैं। परमेश्वर से बातचीत करना वो लंबे समय से रुका हुआ है, इसलिए परमेश्वर उसी वक्त उत्तर नहीं दे सकते। मान लीजिए रेलवे लाइन वो टूटी हुई है और उसे जोड़ने में समय लगता है। इसी प्रकार से एक बार जब परमेश्वर से बातचीत टूट जाते हैं, तो यद्यपि आप परमेश्वर को पुकारे भी, मुश्किल घड़ी में परमेश्वर आपको आसानी से और उसी वक्त उत्तर नहीं दे सकता। इसी प्रकार से और फिर से तेजी से परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक आपको पुकारना पड़ता है। इसराइलियों ने कितनी बार परमेश्वर को पुकारा होगा जब तक कि परमेश्वर ने उत्तर ना दे दिया? कितना लंबे समय से वो पुकार रहे थे और परमेश्वर से बातचीत फिर से तब हो पाई जब वो एक लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे थे। सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं, 1 या 2 सप्ताह में नहीं, 1 या 2 वर्षों में नहीं। आपको अवश्य ही प्रार्थनाएं नहीं रोकनी चाहिए। यदि आप प्रार्थनाएं रोक देते हैं तो आप कभी भी बेहतर स्वर्ग में नहीं जा सकते और आपका प्राण समृद्ध नहीं हो सकता। केवल तब जब आप निरंतर प्रार्थना करते हैं अपने व्यापार के लिए या किसी बात के लिए, परमेश्वर तेजी से आपको उत्तर देगा जब आप उसे पुकारेंगे। प्रार्थना वो एक प्रकार की ऊर्जा है आपकी आत्मा के लिए, जिस प्रकार से आप कार में गैसोलीन डालते हैं। अगर आप प्रार्थना रोकें तो आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते और शरीर की इच्छाएं जो दबी हुई थी उन्हें फिर से ताकत मिलती हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने के लिए हमें हर वक्त जोशीली प्रार्थनाएं करनी हैं। शरीर की इच्छाओं के विरोध में अपने संघर्ष को समाप्त करने के लिए तेजी से तीसरा, आपको परिश्रम पूर्वक शरीर के विरोध में अपनी भावनाओं को बदल देना है। कृपया इसे अपने मन में रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कारण है कि शरीर का व्यक्ति शरीर की इच्छाओं के पीछे चलता है? क्योंकि उन्हें उस तरह से ज्यादा अच्छा महसूस होता है। दूसरी तरफ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना उन्हें मुश्किल लगता है। ये एक गलत भावना है। इसका मतलब यह है कि शत्रु, दुष्ट और शैतान उन्हें धोखा दे रहा है, जबकि पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करना ये कहीं ज्यादा सुविधाजनक और आनंदमय है। लेकिन क्यों शरीर का व्यक्ति उसे अच्छा लगता है जब वो असत्य का अनुसरण करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि उनके अंदर उनकी देह में पुरानी आदतें होती हैं। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार देते हैं और नया मनुष्यत्व पहनते हैं और नई सृष्टि बन जाते हैं। लेकिन कुछ अभी भी अपने जीवन के पुराने मनुष्यत्व को पसंद करते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं, जैसे कि पुरानी दाख मधु नई से कहीं ज्यादा अच्छी है। इस प्रकार से प्रभु को ग्रहण करने से पहले हम संसार के अनुसार चलते थे। इफिसियों 2:2-3 पद कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। यहां पर इस संसार के अनुसार चलना क्या अर्थ है इसका? वह है शत्रु दुष्ट और शैतान का पालन करना, जो आकाश के अधिकार का हाकिम है और उसके द्वारा आप उकसाए जाते हैं। आप शत्रु दुष्ट और शैतान के भड़काए जाने से ऐसा कर रहे हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, वो जो उल्लंघन करते हैं वो इन दुष्ट आत्माओं के नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप सो रहे हैं। किसके कारण आप सो रहे हैं? पवित्र आत्मा के। आपको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है, लेकिन आप अपने सेलफोन को ऑन करते हैं और फिर आप टेक्स्ट मैसेजेस को चेक करते हैं, यहां तक कि टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। किसने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया? पवित्र आत्मा ने? बिल्कुल नहीं। ये वो आत्माएं हैं जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आप शत्रु दुष्ट और शैतान के उकसाई जाने से ऐसा कर रहे हैं अपनी इच्छा से नहीं। प्रार्थनाओं में रोकना भी ऐसा ही है। ये आत्माएं आपसे प्रार्थना को रुकवाती हैं, आपसे प्रार्थना रुकवाती हैं और कुछ और काम में आपको लगा देती हैं। वो आपको उन कामों में लगवाती हैं जो आप पुराने समय में करते थे। वो आपकी प्रार्थनाएं रुकवाती हैं। इसलिए वो आत्मा जो अभी भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। इसलिए परमेश्वर को जानने से पहले, प्रभु को ग्रहण करने से पहले हम भी ऐसे ही थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। ये संतान परमेश्वर के क्रोध की दाख मधु पिएंगे और अंततः वो मर जाएंगे। उनका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं। वे परमेश्वर के पुत्र पुत्री नहीं, वो परमेश्वर के क्रोध की दाख मधु पिएंगे, जिसका मतलब है मृत्यु। वो नर्क का प्याला पिएंगे, जैसे कि कहा गया कि वो क्रोध की संतान है। हम शरीर और मन की मनसाओं को पूरा करते थे। हम वो करते थे जो हम चाहते थे, जो पवित्र आत्मा चाहता था वो नहीं करते थे। जब तक हमारे पास ये पुरानी आदतें हैं, हमें ज्यादा सुविधाजनक लगता है शरीर की इच्छाओं के पीछे चलना। और साथ ही जब हम शरीर की इच्छाओं के पीछे चलते हैं तो हो सकता है कुछ हमें अच्छा लगे या खुशी मिले। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने अभी पवित्र आत्मा की इच्छा और परिपूर्णता का एहसास नहीं किया है, मेरा मतलब है स्वाद नहीं चखा है। वो शरीर की इच्छाओं के पीछे चलते हैं, इसलिए क्षण भर के लिए उन्हें अपने जीवन में अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए, प्रार्थना करने के बजाय अगर आप संसारिक मनोरंजन या आराम का आनंद लें तो क्षण भर के लिए आपको अच्छा लग सकता है। लेकिन वो जिन्होंने प्रार्थना का स्वाद चखा है, उनके लिए प्रार्थना करना ज्यादा अच्छा लगता है और मन भावना लगता है। लेकिन दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता। उनके लिए वह मनोरंजन क्षण भर का होता है और उस समय के गुजर जाने के बाद आप अपने हृदय में और भी अधिक क्लेश महसूस करते हैं संतुष्टि के बजाय। वो आनंद जो आपने अनुभव लिया वो तेजी से खत्म हो जाता है और आपके पास व्यर्थ की भावनाएं बच जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पास कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसमें प्रार्थना रुकना आपको सुविधाजनक लगता है और प्रार्थना करने में आपको मुश्किल अनुभव होता है, तो आपको अपनी भावनाओं को बदल देना है। आपको अपनी भावनाओं को बदल देना है और महसूस करना है कि प्रार्थनाओं को छोड़ना असुविधाजनक है। आपको खुश महसूस करना है, ऊर्जा महसूस करनी है जब आप थकान को प्रार्थनाओं से दूर करते हैं। और अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। आप अपने बच्चों पर प्रार्थनाओं का दबाव डालते हैं, लेकिन वास्तविकता में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनके साथ मिलकर बैठकर प्रार्थना कीजिए और वहां पर जिनके पास विश्वास है उन्हें अगुवाई करने दीजिए कि अनुग्रह के साथ उनकी अगुवाई करें, कि वो अनुग्रह पाएं और आनंद और खुशी से प्रार्थना करें। सिर्फ उन पर प्रार्थनाओं का दबाव डालना ये तरीका नहीं है जो काम कर सके। आप सिखाइए उन्हें कि कैसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के लाभ उन्हें सिखाइए ताकि स्वयं से आनंद और खुशी से वो प्रार्थना कर सकें। एक दिन, दो दिन, तीन दिन जब इस तरह से वो चलता जाएगा, वो धीरे धीरे एहसास करेंगे प्रार्थना के स्वाद को। निरंतर उनकी मदद कीजिए कि वे परिपूर्णता से प्रार्थना करने के स्तर में पहुंच सके, परमेश्वर को पुकारने के स्तर में पहुंच सके और अंततः उन्हें ताकत मिलेगी और विरोधी चीजें धुंधली पड़ जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों पर दबाव डालें कि प्रार्थना कीजिए, तो उन्हें क्लेश महसूस होगा। उनकी पढ़ाई के साथ भी ऐसा ही है। जब आप गुस्सा करते हैं, अगर आप उन पर क्रोधित होते हैं, तो क्षण भर के लिए हो सकता है आपको आराम मिले, लेकिन इन लोगों को हमेशा ही लड़ना पड़ता है, हमेशा क्रोधित होना पड़ता है दूसरे लोगों के साथ। ये कितना दयनीय है। यदि आप क्रोधित होते हैं, आपको उसी वक्त पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामने दुखी होना है। लेकिन अगर आपको इसके बारे में अच्छा लगता है, तो आप उसे अपने गर्म मिजाजी को, अपने क्रोध को आप दूर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ यदि आप पवित्र आत्मा की इच्छा का अनुसरण करें, दूसरों को समझने के लिए, उन्हें सहने के लिए, तो आप शांति में और खुशी में रहेंगे। एक बार, दो बार और तीन बार, उसके बाद आप सुविधा में रहेंगे। अगर आप सब बातों में सत्य का अनुसरण करेंगे, तो पवित्र आत्मा में आप आनंद प्राप्त करेंगे। गलातियों 5:18 पद कहता है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। लेकिन अगर आप आत्मा के चलाए चलते हो, तो तुम व्यवस्था के अधीन ना रहे। आपको अवश्य ही उन पर दोष नहीं लगाना चाहिए, ना उनकी निंदा करनी चाहिए, जो पवित्र आत्मा की आवाज, अगुवाई और प्रेरणा के द्वारा चलते हैं। क्यों? क्योंकि वे व्यवस्था के अधीन नहीं है। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है, सिद्ध करता है। वो व्यवस्था के, मेरा मतलब है पाप के अधीन नहीं, वो व्यवस्था के अधीन नहीं, वो नहीं बंधे है, वो आजाद है। मैं विस्तार पूर्वक इसके ऊपर नहीं बता सकता, मेरे पास समय नहीं है। यातायात के नियम, अगर आप नियम का पालन करेंगे, तो पुलिस से आपको डरने की आवश्यकता नहीं, उन्हें देखकर आपको खुशी होगी। आप पुलिस से डरते हैं, नियमों से डरते हैं, क्योंकि आपके पास नियम को तोड़ने वाला मन है। यदि आप नियमों का पालन करेंगे, तो आप आजाद है। आप समझ पाए हैं? पुराने नियम के दिनों में वो जो व्यवस्था का उल्लंघन करते थे, उन्हें सजा मिलती थी या मार डाला जाता था। यहां तक कि आज भी जो शरीर की इच्छा का अनुसरण करते हैं, उन्हें हमेशा चिंता होती है कि क्या वो नर्क में गिरेंगे या नहीं, या फिर किसी प्रकार की विपत्ति का उन्हें सामना करना पड़ता है। इन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ऐसा महसूस होता है जैसे कि मानो यह डरावना है या उन पर कूड़े पड़ रहे हो। इस तरह से वो अपने जीवन में कितना मुश्किल महसूस करते हैं। इसलिए आप में से यदि कोई इस तरह से महसूस करता है कि आपका मसीह जीवन मुश्किल है, तो आप यहीं से संबंध रखते हैं। आपको क्या करना है? आपको बदल देना है। दूसरी तरफ अगर आप तमाम शरीर की इच्छाओं को दूर करें, पवित्र आत्मा की इच्छा का हर वक्त अनुसरण करें, तो आप हमेशा आजादी और शांति का एहसास करेंगे। आप व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया है। मुझे याद नहीं कि मैंने पिछली बार कब पश्चाताप किया था। मेरे पास कुछ धुंधली यादें हैं। हो सकता है शायद 1990 के दशक में मैंने पश्चाताप नहीं किया है कि पिता मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो। मेरे पास मेरे पापों के पश्चाताप की यादें भी नहीं हैं। आप पश्चाताप करते हैं क्योंकि आपने पाप किए हैं कि पिता मैंने पाप किया है, मुझे माफ कीजिए। लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए कुछ भी पश्चाताप करने के लिए नहीं है। आप सच्चे आनंद, खुशी और स्वर्ग की आशा से भरे हैं, क्योंकि आप आत्मा से भरे हैं। जहां कहीं भी आप हो, जो कुछ भी आप करते हो, आप हमेशा स्तुतियां गाते हैं। आप सुरक्षित है, परमेश्वर के द्वारा हर वक्त आशीषित है, उसके न्याय के नियम के अनुसार। मेरी कभी भी यातायात दुर्घटना नहीं हुई है इस कलीसिया की शुरुआत ही से। इस तरह के यातायात दुर्घटना में पड़ने की ऐसी कोई यादें नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं हर वक्त सुरक्षित रहा हूं। आप कभी भी दुर्घटना या विपत्ति का सामना नहीं करते और ना ही किसी प्रकार की बुराई का प्रभाव, जैसे कि अकेलापन, चिंता, भय, वो आपके ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ चलता है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, गिनती 12:8 पद कहता है, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहार नहीं पाता है। जैसे कि लिखा गया, परमेश्वर की मूसा के साथ अभिन्न दोस्ती थी। परमेश्वर के जनों का परमेश्वर के साथ अभिन्न संबंध था। मूसा के लिए परमेश्वर ने उसे आमने सामने बातें की, प्रेरित पौलुस के लिए हमारा प्रभु वो स्वयं नीचे आया और उसके सामने खड़ा हुआ और उससे बातें की। आज का पाठ रोमियो 8 अध्याय 15 पद कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिले है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। इसलिए आपको वो व्यक्ति बनना है जो परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकता है। वो लोग कभी भी शरीर के काम नहीं कर सकते, उन पापों की तो बात ही छोड़े जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, इसलिए वो परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। और अब मुझे आशा है कि आप भी ऐसी संतान बने जिसका पिता परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध हो। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ऐसी संतान को प्राप्त करने के लिए भेजा है। जैसे कि बहुत से सत्रों में मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने का रहस्य वास्तविकता में बहुत साधारण है। वह है तमाम असत्य को हृदय से दूर करना और पवित्र हृदय को जोत लेना। शुद्ध हृदय रखिए तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। शुद्ध हृदय रखिए तो फिर आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मेरी आत्मिक आंखें खोली। आप शुद्ध हृदय रखिए तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर से मिल सकते हैं और आप परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं। मान लीजिए आप फिल्म देखने गए जिसमें हीरो उसने महान सफलता प्राप्त की और वो अमीर बन गया। उसके लिए यह अच्छा है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए उसका क्या फायदा जो उसको देखने गए? उससे आपको क्या फायदा? वो आपका बनना चाहिए। मेरा मतलब है आप वो होने चाहिए जो उस फिल्म में हो। ये आप होने चाहिए जिसको आशीष मिली है, सफलता मिली है। और यही सत्य परमेश्वर के साथ संबंध में भी लागू होता है। अगर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बातचीत कर सके, उसकी आवाज सुन सके, अगर परमेश्वर आपके साथ हो, तो फिर उससे बढ़कर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यह कहना कि आपकी आत्मिक आंखें वो कुछ नहीं है, इस तरह की फिल्म देखना कुछ नहीं है। यदि आप पवित्र संतान बने जो परमेश्वर के सदृश हो, आप परमेश्वर से साफ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हृदय और मन वो एक हो जाता है। जो कुछ आपके मन में होगा, जो कुछ आप कहेंगे, जो कुछ आप करेंगे, आप सब कुछ जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही करेंगे। मुझे आशा है कि पवित्र आत्मा के साथ साफ संबंध स्थापित करने के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चलने का आनंद प्राप्त कर सकें। आप परमेश्वर की बहुमूल्य संतान बने जो अंत के इन दिनों में परमेश्वर के महान प्रेम और इच्छा को प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम जीसीएन टीवी दर्शकों पर और मानविन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, और सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग कोशिकाएं उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा छुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुखाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो, पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं, तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं, तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें, वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे, दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो, पिता कोई दाग वहां ना रह जाए, तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ, पिता मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की, पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो, बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो, दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाए, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए, पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं, वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए, उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाए, कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा, विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए, उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी, अपने बच्चों को आशीष दीजिए और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें, वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।